दोस्तों, मेरे काबिले एहतराम बुजुर्गों, नटखट बच्चों, प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूं आपकी मेजबान इरम इमरान और आप समाप्त फरमा रहे हैं इस वक्त रेडियो वेरितास की उर्दू सर्विस। दोस्तों, हमारी आवाज को दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करने का बहुत शुक्रिया और जी हाँ, आपके प्यार भरे पैगाम अरसाल करने का भी शुक्रिया। सामईन, आज सोमवार है और आज के प्रोग्राम सुनने से कबल समाप्त फरमा लीजिए हमारे पता जात। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्रामों को ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए urdu-veritas-asia.org। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रोग्राम सुनिए और हमारा पेज भी जरूर लाइक कीजिए, जो कि है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम सुनिए और जी हाँ, इसे लाइक करना और इन पर कमेंट करना हर किस्मत भूलिएगा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे दोस्त ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैं, हमें आरवीए उर्दू सर्विस से फॉलो कर सकते हैं और प्रोग्रामों से लुत्फंदोज हो सकते हैं। दोस्तों, आज मंगल है और आज के रोज आप प्रोग्राम समाप्त फरमा सकेंगे नगमा सहे और रोशन राहें। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम फादर कैसर फेरोज की जेर निगरानी तैयार किए गए हैं। तो चलिए समाप्त फरमाइए आज के प्रोग्राम।
हमारे खुदावन यस्सु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 15वां बाब 21 से 28 आयत तक। एक दिन यीशु जनासरत से रवाना होकर सुरो सैदून के इलाके में गया और देखो, एक कनानी औरत जो उस मुल्क की थी पुकारते हुए कहने लगी कि ऐ खुदावंद, दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी को एक बदरू बुरी तरह से सताती रहती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया। तब उसके शागिर्दों ने पास आकर उसकी मिन्नत की और कहा कि उसे रुखसत कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन वो आई और उसे सजदा करके कहा, ऐ खुदावन, मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को डाल देनी मुनासिब नहीं। तो उसने कहा, सच है ऐ खुदावन, क्योंकि पिल्ले भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, इसे कबल वाकई में यीशु ने साबित कर दिया कि हर किस्म की खुराक पाक है। और अब यहाँ यीशु ये कहता है कि गैर कौम लोग नापाक नहीं हैं। अब यीशु शुमाल में वाकई सूर और सदा की सरहदों में गया। इस इलाके को सूर्न फीके भी कहते हैं। वो एक घर में दाखिल हुआ और ना चाहता था कि कोई जाने, लेकिन उसकी शोहरत उससे पहले वहाँ पहुँच चुकी थी। जल्द ही लोगों को उसकी मौजूदगी का इल्म हो गया और एक गैर कौम औरत उसके पास आकर अपनी बदरू गरिफ्ता बेटी के लिए दरख्वास्त करने लगी। हम इस हकीकत पर जोर देंगे कि वो यूनानी थी, यहूदी नहीं थी। यहूदी खुदा की बरगजीदा कौम थी और खुदा के हजूर में खास एहसास और मकाम रखते। उसने उनके साथ नहायत बड़े और आला वादे कर रखे थे, अपना कलाम उनके सुपुर्द किया था और पहले खैमे इज्तमा में और बाद में हैकल में उनके दरमियान सुकूनत करता था। इसके बरक्स गैर कौम लोग इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादे के अहदों से नावाकिफ, ना उम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। खुदावंद यीशु पहले इसराइली कौम के पास आया था। उसने खुद को बतौर बादशाह कौम के सामने पेश किया। खुशखबरी पहले इसराइल के घराने को सुनाई गई। ये बात समझना जरूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि उसने स्वर्ण फीकी औरत से जो सलूक किया उसका बस मंजर क्या है। जब उसने दरख्वास्त की कि यसु बदरू को उसकी बेटी में से निकाले तो लगता है कि उसने दरख्वास्त न मंजूर कर दी। यसु ने कहा, पहले इसराइलियों को सैर होने दो, और ये भी कि रोटी लेकर कुत्तों यानी गैर कौम वालों को डाल देना अच्छा नहीं। उसका जवाब इनकार नहीं था। उसने कहा था कि पहले इसराइलियों को सैर होने दो। ये लफ्ज बहुत सख्त मालूम होते हैं। दरअसल इनसे उसकी तौबा और ईमान का इम्तिहान करना मकसूद था। उस वक्त खुदावंद की खिदमत बुनियादी तौर पर यहूदियों के लिए थी। गैर कौम होने के बायस खुदावंद या उससे मिलने वाले फायद पर उसका कोई हक नहीं था। क्या वो इस हकीकत को तस्लीम करने को तैयार थी? उसने ये बात तस्लीम की। उसने जो कुछ कहा हकीकतन इसका मतलब है कि हाँ खुदावन, मैं एक गैर कौम हकीर हूँ और मैं देखती हूँ कि कुत्ते भी मेज के तले इसराइलियों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं, और मेरी दरख्वास्त भी सिर्फ इतनी ही है कि यहूदियों के दरमियान तेरी खिदमत के चंद बचे हुए टुकड़े मुझे भी दे दे। ये ईमान नहायत काबिले तारीफ है, और खुदावन ने फील फूर इसका अजर देकर लड़की को दूर ही से शिफा अताहित की। जब वो औरत घर पहुंची तो बेटी को पूरे तौर पर सेहत याब पाया।
अपना रहम बता, बरकत दे। ریڈیو ویریتاس ایشیا اردو سروس کے عزیز دوستو، پروگرام روشن رہے لیے ہم ہیں آپ کے میزبان سارا جان اور فرانسس سیویئر، خلوص بھرا سلام قبول فرمائیے۔
سنائیے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور دوستی کے اس ناطے کو نبھانے اور اسے تقویت پہنچانے کے لیے ہمیشہ کوشاں ہوں گے۔
ساتھی کہتے ہیں کہ جھیل میں جو پرندے رہتے ہیں جھیل کے سوکھ جانے پہ کسی دوسری جگہ کا رخ کرتے ہیں، لیکن کمل کا پھول آخری دم تک رہتا ہے اور جھیل کے ساتھ ہی سوکھتا ہے۔ دوستی بھی بالکل اسی طرح ہے۔ اچھے دوست نہ صرف خوشحالی بلکہ برے وقتوں میں بھی دوست کا ساتھ دیتے ہیں۔
جی دوستو، تو کیسا لگا آپ کو یہ خیال؟ امید ہے آپ بھی اپنے دوستوں کے لیے کمل کا پھول بن کے رہیں گے اور دوستی کی قدر کو فروغ دیں گے۔
فرانسس، بعض لوگ موسموں کی طرح ہوتے ہیں، ان کے بدلنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی لیے بے وفا دوستوں کو موسموں سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے. موسم آتے ہیں اور بدل جاتے ہیں، لیکن دوستی کی قدر موسموں سے کہیں بڑھ کے ہے، اور یہ ایک مقدس رشتہ ہے، ایک بندھن ہے.
دوست ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پہاڑ کے پہلو میں دو دوست رہتے تھے. یہ سن کر تھوڑا عجیب محسوس ہوگا کہ ان میں سے ایک شیر اور دوسرا چیتا تھا. وہ بچپن ہی سے گہرے دوست تھے اور اس وقت سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے جب وہ بہت چھوٹے تھے. شیر اور چیتے کے درمیان فرق بھی نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ان کی دوستی ایک دوسرے کے لیے عجیب نہ تھی. پہاڑ کا وہ حصہ جس کے نیچے وہ رہتے تھے بہت پر امن تھا، شاید اس لیے کہ اس کی چوٹی کے نیچے ایک راہب بھی رہتا تھا. دنیا سے بالکل بیگانہ تھا اور دنیا کے معاملات میں دخل نہیں دیتا تھا.
ساتھ ہی ایک دن یوں ہوا کہ دونوں دوستوں میں ایک غیر معمولی بات سے تنازع ہو گیا. چیتے نے کہا، ہر کوئی جانتا ہے کہ جب پورا چاند گھٹتا ہے اور نیا چاند نکلتا ہے تو سردی ہوتی ہے. شیر نے کہا، تم تو بیوقوف ہو، تم نے یہ نادانی کی بات کہاں سے سنی؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ جب نئے چاند سے پورا چاند بنتا ہے تو پھر سردی ہوتی ہے. ساتھ ہی ان کا یہ جھگڑا طول پکڑتا گیا. دونوں اپنے اپنے خیال پہ ڈٹے ہوئے تھے اور اس کے حل کے لیے کسی نقطے پہ نہیں پہنچ رہے تھے.
دوست، اب کیا ہوا؟ نوبت یہاں تک آ گئی کہ دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اچانک انہوں نے سوچا کہ اس طرح تو ان کی دوستی کو دھچکا لگ سکتا ہے. آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دانا راہب کے پاس جائیں گے، یقیناً وہ اس سوال کا جواب جانتا ہوگا.
ساتھ ہی وہ دونوں دوست اکٹھے اس پرسکون راہب کے پاس گئے اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس کے سامنے جھکے. راہب نے ان کی اس اچانک آمد کی وجہ پوچھی. انہوں نے اپنا سوال اسے بتایا اور کہا، جناب آپ ہی اس پیچیدہ سوال کا جواب دے سکتے ہیں. راہب لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، چاند کے کسی بھی رخ پہ سردی آ سکتی ہے، نئے سے پورے چاند کے وقت یا پھر سے نیا چاند نکلنے پہ، کیونکہ ہوا کے باعث سردی ہوتی ہے، خواہ یہ شمال، مغرب یا مشرق سے چلے. تم دونوں درست ہو اور کسی کو بھی دوسرے سے شکست نہیں ہوئی.
دوست راہب نے مزید کہا، تم دونوں کی بچپن ہی سے گہری دوستی ہے، اس لیے یہ اچھا نہیں کہ تم دونوں آپس میں جھگڑو اور علیحدگی کا سوچو. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تم بغیر جھگڑے کے زندگی بسر کرو اور اتحاد کے ساتھ رہو، کیونکہ اتحاد ہی سب سے بہتر ہے.
ساتھی شیر اور چیتا اس دانا راہب کا پیغام سمجھ کے انہوں نے اس کے اس مفید مشورے کا شکریہ ادا کیا اور بقیہ زندگی خوشی خوشی اچھے دوستوں کی طرح بسر کی.
جی دوستو، موسم آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن دوستی ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور یہ اس گیلے سیمنٹ کی طرح ہوتی ہے، جب آپ اس پہ پاؤں رکھتے ہیں تو وہاں سے ہٹنا مشکل ہوتا ہے اور آپ اپنے نشان چھوڑے بغیر وہاں سے ہٹ نہیں سکتے.
ساتھ ہی ویریتاس ایشیا کی دوستی بھی کچھ اسی طرح ہے، جو آپ کے دلوں پہ امن دوستی کے نشان چھوڑے بغیر آپ کو جدا نہیں کر سکتی. سامعین، ریڈیو ویریتاس ایشیا کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور آپ اقدار کی تعلیم پہ مبنی پروگرام روشن راہیں سماعت فرما رہے ہیں.
دوست، آج کے اس پروگرام میں ہم دوستی کی قدر پہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ہر شخص کو دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ کوئی بھی شخص تنہا رہنا نہیں چاہتا، کوئی بھی تنہائی کی زندگی کا شکار نہیں ہونا چاہتا. تنہائی سے رہائی پانے کے لیے ہمیں دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے.
ساتھیو، بائبل مقدس میں مرقوم ہے، ایک وفادار دوست ایک قابل اعتبار پناہ گاہ ہوتی ہے، جس کسی کو بھی مل جائے اسے ایک انمول خزانہ مل جاتا ہے. ساتھیو، دوستی کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم اکثر ہی بھول جاتے ہیں. صرف دوسروں کے ساتھ ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ ہمیں دوسروں کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہیے، یعنی ہماری موجودگی میں یہ صلاحیت ہو کہ ہم دوسروں کو قبول کریں، ان کی ذمہ داری قبول کریں.
ساتھی، دوستی میں ہم ایک دوسرے کی سنتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ان کا لین دین کرتے ہیں. اگر ایسا نہیں تو ہر کوئی ایک محفوظ خول میں قید ہو جائے. لیکن دوست تنہا لوگ ناخوش ہوتے ہیں اگر وہ اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، जैसे वो अक्सर करते हैं तो वो अपनी कदरों कीमत खो बैठते हैं। वो अपनी खामियों की मुबालगा आराई करते हैं, अपनी खामियों से अपनी शनाख्त करवाते हैं, अपना एतमाद और खुदी खो बैठते हैं।
साथी, बाज़ दफा ऐसे लोग इतने तल्ख मिजाज होते हैं कि वो अपनी तन्हाई की वजह का कसूरवार दूसरों को ठहराते हैं कि दूसरों ने उन्हें रद्द किया है। वो बीमार हो जाते हैं और इन पे हर वक्त दहशत तारी रहती है। उनका एक दिफा ये है कि वो अपने आप को कसूरवार बना लेते हैं ताकि लोग इनसे दूर रहें। जिस चीज की उन्हें जरूरत होती है यानी लोगों से, उनसे वो कतराते हैं।
दोस्त लोग तन्हाई के बजाय दीवारें बनाते हैं, यानी वो दोस्त बनाने के बजाय दुश्मन बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में तन्हाई को दूर करने के लिए हमें वाकई दोस्तों की जरूरत है।
साथियों, अगर देखा जाए तो हकीकी दोस्त जिंदगी में खुशी लेके आता है, वो रूह में बेदारी पैदा करता है, बसीरत देता है, हिम्मत दिलाता है, बढ़ने के लिए दिल देता है, नरम दिली से सोचने और शफकत से जीने में मदद देता है। दोस्त जुरत, समझ, वक्त, प्यार और अपना आप देता है। दोस्त गुस्से, खुदगर्जी और गलतियों की बर्दाश्त करता है। वो हमारे साथ साथ चलता है, हमारे साथ काम करता है, हमारे साथ रोता और हंसता भी है।
सारा, आपने दोस्त के बारे में बहुत खूबसूरत बातें कही। क्या ही अच्छा हो अगर हम अपने दोस्तों के लिए ऐसे ही हों। हमने शुरू में बाइबल मुकद्दस से हवाला दिया। मुझे चंद और हवाला जात याद आ रहे हैं। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, खुशबूदार तेल दिल को शादमान करता है, जैसे दोस्ती की शरीनी रूह को सुकून देती है। एक वफादार दोस्त की कोई कीमत नहीं होती, इसकी कदर मापी नहीं जा सकती। और फिर यूं कि एक वफादार दोस्त जिंदगी के लिए आबे हयात होता है।
साथी, हकीकी दोस्ती हमें हमेशा ये बताती है कि हम काबिले कबूल हैं और कबूल किए गए हैं। कबूल किए जाने की सबको जरूरत है। जब हम दोस्ती में कबूलियत का तजुर्बा करते हैं तो हम ये जान जाते हैं कि कोई है जो हमारी कदर को पहचानता है। किसी से कदर करवाना, जो कदर पहचानता है, अपने आप को कदर देने की तरफ पहला कदम है।
सर, मैंने अक्सर देखा है और सुना भी है कि बाज़ लोगों की दोस्ती में इसलिए दरार आ जाती है क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत सी तवक्कात रखते हैं। वो कहते हैं, दूसरे दोस्त ने मुझे फोन नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगा। वो मेरी मुलाकात को नहीं आया तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इसी तरह छोटी छोटी बातों से दूरियां जन्म लेना शुरू हो जाती हैं।
फ्रांसिस, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा होता है। लेकिन मैं कहूंगी कि दोस्ती दो तरफा शाहराह की मानिंद है। अगर दोनों तरफ से इस पे गुजर ना हो तो ये सुनसान हो जाएगी। इस तरह की शिकायत बुरी अलामत हैं। हमारे पास हमारे दोस्तों के लिए वक्त होना चाहिए और हमें उनके लिए वक्त निकालना चाहिए। अपने मसरूफियात का उज्र पेश करना बहुत आसान है, लेकिन जरा सोचिए कि ये मसरूफियात कितनी अहम है। अगर हमने दोस्ती को कामयाब बनाना है तो हमें इस सवाल पे वाकई गौर करना है, यानी कि हमारी मसरूफियात कितनी अहम है।
दोस्ती को मजबूत करने के लिए हमें खुद पेशकदमी करना होगी। हमें ये भी सुनने और समझने की कोशिश करनी है जो कुछ हमारा दोस्त कहने की कोशिश कर रहा हो लेकिन ना कह पा रहा हो।
साथियों, कहते हैं कि जब आपको कोई प्यार नहीं करता तो एक दोस्त का फर्ज है कि आपसे प्यार करे। जब कोई आपको बर्दाश्त ना करे तो वो आपकी बर्दाश्त करे। जब आप रोते हैं तो वो आपके साथ रोए। उसे आपकी खुशियां दुबाला करनी चाहिए और गमों को बांटना चाहिए। आपकी दिल की जरूरियात को समझना चाहिए।
साथियों, आखिर में हम यही कहेंगे कि खालिस दोस्ती में वफादारी की तवक्को करना हमारा हक है और वफादार रहना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब एक दूसरे के लिए वफादार दोस्त साबित हों और यूं दोस्ती की कदर को तकवीत पहुंचाएं और वफा की राह पर चलते जाएं।
मुझको वफा की राह पे चलना सिखा गया, मुझको वफा की राह पे चलना सिखा गया। मैं तो बेवफा था, बावफा बना गया, मुझको वफा की राह पे चलना सिखा गया। मैं तो बेवफा था, बावफा बना गया, मुझको वफा की राह पे चलना सिखा गया।
साथियों, इसी के साथ प्रोग्राम रोशन राहें इख्तिताम को पहुंचता है। सारा जॉन और फ्रांसिस जेवियर को इजाजत दीजिए।
शुक्र करो